संतप्त मानस शांत है जिनके गुणों के ध्यान में वर्धमान हों उचरे हमारे अपन ने कहा था तीन तरह की शैलियां सामने आई, एक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन वाली, एक सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र वाली। ये टोलरमल जी का मोक्षमा प्रकाशक में आता है ना, पहले ज्ञान की बात आती है बाद में सम्यक दर्शन की बात आती है, एक दो जगह खासकर उन्होंने तर्क भी दिया है कि जाने बिना श्रद्धान किसका करेगा। और ये प्रवचन सार की यही शैली है जो जयसन ने की ना, कि पहले सम्यक ज्ञान अधिकार और फिर सम्यक दर्शन अधिकार बाद में। और हमने देवशास्त्र गुरु अधिकार तीसरा नाम दिया था ना, अब उसके औचित्य की बात चल रही है कि इसे हम देवशास्त्र गुरु एक देव अधिकार शास्त्र अधिकार और गुरु अधिकार कैसे कहें। तो अभी पहले अपने चार पैरे पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी जो आप बता रहे हो चुके हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैन मान्यतानुसार देवों में अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी आते हैं और गुरुओं में आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी आते हैं। अरहंत देव द्वारा प्रतिपादित और गुरुओं द्वारा लिपिबद्ध वाणी ही शास्त्र है। इस प्रकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन या सम्यक ज्ञान महाधिकार में देव का स्वरूप और जैन ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार में सम्यक दर्शन में या सम्यक दर्शनाधिकार में शास्त्र का स्वरूप और चरणान योग सूचक चूलिका या सम्यक चरित्राधिकार में गुरुओं के स्वरूप का प्रतिपादन है। चारित्र का वर्णन है तीसरे में ज्यादा है, और जब गुरुओं का वर्णन होता है तो चारित्र की बात होती है और सच्चे देव और शास्त्र की बात होती है। अब एक शास्त्र बच जाते हैं तो वास्तव में तो देव शास्त्र गुरु में सब आ जाते हैं, क्योंकि अरहंत देव वीतराग सर्वज्ञ हैं और अपनी इसी वजह से पूज्य हैं और अपने पूरे न्याय शास्त्र में सर्वज्ञता की सिद्धि की है और उससे पूज्यता की सिद्धि की है। फिर उन अरहंत की वाणी जो लिपिबद्ध हुई उसका नाम शास्त्र है और वो लिपिबद्ध गुरुओं ने की आचार्यों ने की, ऐसा तो अपने पास कोई शास्त्र मिलता नहीं है कि ये सर्वज्ञ भगवान का लिखा हुआ हो। डायरेक्ट लिखने वाले तो आचार्य ही हैं, तो देव और गुरु तो हो ही गए और वो शास्त्र लिखे ही गए। देव की वाणी और गुरु की वाणी ये दोनों की वाणी है तो वो हो जाए। और शास्त्र में जैसे तत्व का वर्णन होता है वैसा सब वर्णन गे तत्व प्रज्ञापन में है। इस तरह से देवशास्त्र गुरु अधिकार की बात भी हो जाती है। अरहंत देव द्वारा प्रतिपादित गुरुओं द्वारा लिपिबद्ध वाणी ही शास्त्र है। इस प्रकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन या सम्यक ज्ञान महाधिकार में देव का स्वरूप, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार या सम्यक दर्शन महाधिकार में शास्त्र का स्वरूप और चरणान योग सूचक चूलिका अथवा सम्यक चरित्राधिकार में गुरुओं के स्वरूप का प्रतिपादन है। ध्यान रहे मंगलाचरण में देव और गुरुओं को याद किया गया है। विशेष रूप से आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका में बीच बीच में जो गाथाएं उपलब्ध होती हैं और जो तत्व प्रदीप का टीका में नहीं पाई जाती वे सभी अरहंत और सिद्ध परमेश्वरियों के स्मरण रूप ही हैं। इससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि वे इस महाधिकार में देव का स्वरूप समझा रहे हैं। कल मैंने थोड़ी चर्चा की थी कि जयसेनाचारी और अमृतचंद्राचार्य की टीकाओं में जो अंतर है, जैसे समय सार में उसमें 445 गाथाएं हैं, इसमें 414-15 क्या है ऐसी हैं जो भी हैं, ये गाथाएं हैं समय सार में, तो जो 25-30 गाथाओं का अंतर आता है उनको बारीकी से देखो कि भाई अमृतचंद ने ऐसी क्या चीज थी जो छोड़ दी, जो उन्हें छोड़ने लायक रखी, चाहे उन्हें टीका ना लिखकर छोड़ी हो और चाहे बिल्कुल ही छोड़ दी हो और चाहे उन्हें जो प्रति प्राप्त हुई थी उसमें भी गाथाएं हो ही नहीं। जंगल में भ्रमण करने वाले और अपने पास रखने की कोई बिल्कुल व्यवस्था न होने के कारण और उसकी उन्हें अपेक्षा भी नहीं होने से, क्यों कोई व्यवस्था मेरे को हो गए तो मेरी किताबें सुरक्षित हो जाएं, उनका सुरक्षित रखना रहना वैसे ही असंभव था। कोई पन्ना उड़ गया तो उड़ गया बस, अब दौड़ के भागे कौन, कहां तक भागे, ईडिया समित पूर्वक चलना पड़ेगा, और पत्ते को तो ईडिया समित पूर्वक चलना नहीं है, वो तो हवा जैसी चलेगी ऐसे पेज उड़ जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई पन्ना उड़ गया हो, लेकिन गहरी बात यह है कि उसमें अधिकांश गाथाएं मंगलाकरण की, किसी जब भी उनको धुन में आई तो एक भगवान को याद कर लिया, नियम सार में तो बिल्कुल खचा कर कहीं भी उनको जो लिखना होता है कलश लिख देते हैं, बस फलाने भगवान को नमस्कार हो फलाने भगवान को, और कोई हेतु कहीं कोई दिखाई देता नहीं है, बस जिस चित्तालय में बैठे थे वहीं जो भगवान विराजमान है उनको एक छंद लिख दिया उन्होंने, और उनने उन नियम सार की टीका के बीच में ही रख दिया, अलग से कहां रखे हैं, वो उस किताब का अंग बन गया। माने उनका कहीं कोई वो नहीं है, तारतम्य रिलेवेंस नहीं है। समय सार की गाथाओं में भी ऐसा है, तो और भी है द्वितीय तीसन की गाथाएं हैं, या तो मंगलाचरण की हैं और नहीं तो फिर वही बात जो अमृतचंद्र ने दो गाथाओं में कही उन्होंने चार में कह दी, बस उन्हें और दो उदाहरण और दे दिए। तो इससे एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है कि कोई चीज रह गई है, कोई चीज अपनी खो गई है, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे ये देख क्यों आई। कुछ विद्वानों ने तो ऐसा भी कहा कि वो गाथाएं भी भाग्य से उस स्तर की नहीं है कि कुंद कुंद के स्तर की, ये जरा आश्चर्य की भाषा है कि किसी दूसरे उनके शिष्य ने या किसी ने उसे रंग छूटा तो उसने दो गाथाएं लिख दी और उसमें रख दी, और ऐसा चलता था, आज भी चलता है इधर पश्चिम की तरफ, कि ये बड़ा बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि हमने लिख दी और अपना नाम नहीं लिखा, ये नाम नहीं लिखा, ये नाम लिखने वाले बहुत मानी हैं, बहुत वो चाहते हैं, ऐसे ये जरा जरा सी बात पर चार गाथाएं लिखी में अपना नाम लिख दिया ऐसा मान के 200 पेज लिख देते हैं और किसी का नाम नहीं लिखते, और उन्हें समझाओ तो समझ में आती नहीं उनकी। वास्तव में नाम नाम के लिए नहीं लिखा जाता है, जिम्मेवारी के लिए लिखा जाता है। अब कैसी जिम्मेवारी, कि उस ग्रंथ में ये दो गाथाएं लिखी निकली, खाली जगह थी तो लेखक महोदय ने लिख दी कि बहुत अच्छी गाथाएं लिखी, लेकिन वो जो आचार्य हैं जिनकी वो क्या ग्रंथ है उनके सिद्धांत के हिसाब से बिल्कुल गलत है। ऐसी हो सकती है कोई? क्या हो सकती है कि उसमें लिखा होगा कि दया धर्म है, दया पालो, यही लोक में तो यही बढ़िया मानी जाती है ना, दान दो, उपकार करो, और पूरे ग्रंथ में लिखा होगा ये तो शुभ भाव है, इससे कुछ नहीं होता है, ऐसे नहीं कुछ नहीं होता है, तो होंगे ना उल्टी के नहीं। वे जो ऐसे लेखक हैं जो दूसरे के में अपनी किताब में घुसेड़ दें, वे ऐसी चीजों को अच्छी मानते हैं, अच्छी बात तो उन्हें पता ही नहीं होती है। आपको लगा और मैं कैसे आरोप लगा रहा हूं, ये फैक्ट है। कहीं से भी दो दो हालात हो जाते ला कर यहां पर लगा देते हो, खत्म। पूजनों में छंद जोड़ना ये तो जैसे ने अपना अधिकार समझ लिया, चाहे जिस पूजन में चाहे जो छंद जोड़ देंगे, पर इनके कुछ परमानेंट छंद होते हैं जो गारंटी से कर्तृत्व के पोषक होते हैं, और हर में किसी भी की हुई कविता में ये बीच में जोड़ देते हैं, इनके सब फटाफट इनके पार्टी वाले तत्काल तैयार हो जाते हैं और वे भी जय जय नाथ परम गुरु करने लगते हैं। इतना भी ध्यान नहीं रखते हैं अभिनंदन जी कि जो मूल पूजा में ये बात कही जा रही है, इसमें जो कही जा रही है वो उसके अनुकूल है कि प्रतिकूल है, कि वही बात कही कि उस बात का पोषण है कि क्या है। जैसे केसरिया दुपट्टा रंग दो, दुपट्टा केसरिया तो हर एक चीज में रंगा लेते हैं ये लोग, कभी कभी पीला भी रंगा लिया, कह रहे क्या नुकसान है, मतलब किसी में कहीं भी कोई पंक्ति लगा देते हैं। सचमुच मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कभी आप लोग उस भाव से ये भाव जुड़ता है कि नहीं ये सोचते नहीं हो, कि सिर्फ पंक्ति राग बस कदम है, तो मैं क्या गड़बड़ कह रहा हूं, ऐसा हुआ मैं तो बता रहे 200 वर्ष पहले स्वर्गवास हो गया, अब वो लिखते लिखते आधा पेज रह गया तो लेखक ने, अब लेखक भी इतनी किताब में लिखता रहते हैं, लेखक माने प्रूफ रीडर, मैं उनको नकल करने के पैसा दिए गए हैं और दिए गए हैं कि तुम इनकी नकल कर दो बस खत्म। जगह होती क्या? सब जगह थी तो मैंने लिख दिए, क्या हो गया, जगह बेकार जा रही थी। बेकार तुमने उल्टी बात लिख दी, जिस किताब में जो बात लिखी है उससे उल्टी लिख दी, और कहता है किसने कहा था, कहेगा कौन, इतना तो हमें भी आता है। एक छंद या मौखिक आना ये यही बड़ी विद्वत्ता है, उसके अर्थ से तो किसी को कुछ लेने देना नहीं है, ऐसा चलता फिर पूरे देश में जगह जगह जाओ कभी कहां तो क्या कह रहे थे, ये कहां से कहां आ गए हैं, तो वो कैसे भी हुई हो लेकिन वे ज्यादा गाथाएं हैं, तो उनकी स्टडी हमने की कि ये कुंदकुंद की गाथाओं से मिलती जुलती हैं क्या। कुंदकुंद की गाथाओं का जो स्तर है वो स्तर इन गाथाओं का है कि नहीं है, जैसे रैनसार, ये कुछ पंडित कहते हैं देवेंद्र कुमार वगैरह कि ये कुंदकुंद का ग्रंथ है, वो छपा भी दिया उन्होंने कुंदकुंद के नाम से, और बहुत विद्वान ये कहते हैं कि इसमें समय सार जैसा कोई स्तर ही नहीं है, रोचन सार जैसा, नियम सार जैसा, मानव ग्रंथ का स्तर जो है वो कुंदकुंद के ग्रंथों जैसा है ही नहीं, क्या नहीं? इसी आधार पर वो रिजेक्ट करते हैं कि ये कुंदकुंद का नहीं है, और इसमें जो लिखा रहता है तुम्हारी किताब में लिखा होगा कि एक पांच ग्रंथ कुंदकुंद के हैं और इनके अलावा रयानसार और द्वारसान प्रेक्षा को भी कुंदकुंद की कहा जाता है, ये लिखा मिलेगा हर जगह आपको। अब द्वादशानुप्रेक्षा बत्तीस तीस चालीस छंद होंगे। अब आपसे देखो तो वो कुंद कुंद के स्तर की है, देखें कैसे नहीं क्या है, समय सार के स्तर की ऐसी कोई बातें नहीं है उसमें, तो सामान्य सी बातें हैं। आपने तो कोट किया, क्या किया कोट हमने, आनंद जननी हो कि वो आनंद की जननी है, तो इसमें क्या हो गया, ये तो बिल्कुल प्रशंसा वाचक शब्द है, आनंद पैदा करती है भाई, इसमें इसमें क्या है, इसमें कोई दार भावना का प्रतिपादन है, इसमें कोई अनंतता का स्वरूप बताया है, इसमें क्या है, कौन सी भावना के लिए बता रहे हैं आप, कहने के लिए बहुत बढ़िया है, मतलब ऐसे कोई सामान्य कमेंट्स हैं जी, लेकिन अच्छे लगते हैं। कुंद कुंद जैसे आचार्य जिन बारह भावनाओं को आनंद की जननी कहते हो, जननी माने माँ माँ माँ, वो कितनी महान होगी, इसके लिए बहुत अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं, लेकिन वस्तु के स्वरूप के प्रतिपादन पे जाते हैं तो उसमें कुछ नहीं दिखता है। तो ये बहुत जगह इस तरह सी चीजें मिली हुई होती हैं, ऐसे आंख मीच के स्वीकार नहीं करना, और ये अगले जैनियों का नहीं है, अजैनियों के ग्रंथों में गीता में भी श्लोक नए नए मिल जाएंगे, उनके भी महामहान ग्रंथ हैं, उनमें भी 150 चौपाइयां गायब हो जाएंगी, 150 चौपाइयां नई मिल जाएंगी, नई जोड़ी हैं, ऐसा चलता रहता है और ऐसी रिसर्च चलती रहती है। तो फिर क्या करें, हम तो फंस गए, कोई लोग हमें फंसाएगा, जो मूर्ख है उन्हें तो फंसना ही है, तुम्हारी कोई बात नहीं है, क्यों तुम सोचो ना, नहीं लिखा होता तो फंसते, लिखा है तो फंसते, तुम सोचते क्यों नहीं, तुम सोचने को दिया है ना कि नहीं दिया है, ये सही है कि नहीं, देखो ध्यान रहे मंगलाचरण में देव और गुरुओं को याद किया ही गया है, विशेष रूप से आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका में बीच बीच में जो गाथाएं उपलब्ध होती हैं और जो तत्व प्रदीप का टीका में नहीं पाई जाती हैं, वे सभी अरहंत और सिद्ध परमेश्वरियों के स्मरण रूप ही हैं। इससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि वे इस महाधिकार में देव का स्वरूप ही समझा रहे हैं, माने उनको भक्ति का तो भक्ति का स्वरूप समझा रहे, हम उसके भक्ति का प्रतिपादक ग्रंथ कह रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, है ना। अतीन्द्रिय ज्ञान माने केवल ज्ञान, देखो अतीन्द्रिय ज्ञान त्रिकाली ध्रुव को भी कह सकते हैं, है ना, पर्याय माने पर्याय में प्रकट हो उसे भी कह सकते हैं, और जो जो त्रिकाली ध्रुव है उसे भी कह सकते हैं, इसलिए यहां पर सर्वज्ञता केवल ज्ञान अर्थ में समझना, अतीन्द्रिय ज्ञान उस अर्थ में नहीं समझना, और अतीन्द्रिय अनंत सुख भी अरहंतों सिद्धों को ही प्राप्त है। ये क्या प्रयास चल रहा है, ये बातें कह के क्या कह रहे परमात्म, ये बता रहे कि देव शास्त्र देव अधिकार शास्त्र अधिकार और गुरु अधिकार के रूप में भी बांटा जा सकता है, ये इस पे सारा तर्क चल रही है। तो कहते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान तो उसको भी बोलते हैं, अब देखिए सबसे पहला अधिकार कौन सा है इसमें, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन तो सबको मालूम है, अब ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में फिर कौन सा है सबसे पहला, फिर उसके चार हैं, दूसरे के तीन हैं, समझे ना, तो उसका शुद्धोपयोग अधिकार, पहला अधिकार कौन सा है, शुद्धोपयोग अधिकार, तो कहते शुद्धोपयोग अधिकार, शुद्धोपयोग तो देव के ही स्वरूप है, क्योंकि शुद्धोपयोग प्रगट पर्याय का नाम है, त्रिकाली ध्रुव का नाम तो है नहीं, और देव शुद्धोपयोगी हैं, वे अहंत सिद्ध तो शुद्धोपयोगी हैं ही, और बाकी जो शुद्धोपयोगी हैं वो शुद्धोपयोग में जाने वाले हैं, जो होते हैं ना असली शुद्धोपयोगी छपक श्रेणी में चले गए, बोले तो गारंटी से फिर अनंत काल तक शुद्धोपयोग में रहने वाले हैं, तो शुद्धोपयोग अधिकार भी देव अधिकार है, समझे? समय तो शुद्धोपयोग की बात कर रहे थे, ये शुद्धोपयोग की बात कहां से आई थी, अभी आएगी। इनमें ये कही थी कि तुम्हारे पास केवल ज्ञान, वो अनंत सुख मिलता कैसे है, केवल ज्ञान है, ये शुद्धोपयोग से। असलियत बात तो वो है, ध्यान हो तो, कि उनने कही थी कि हम तुम पंच परमेश्वरी को नमस्कार करके अब अपने आश्रम में जाते हैं, है यार, उपसम में आमी समम, मैं साम भाव को प्राप्त होता हूं, इसका नाम है आश्रम में जाता हूं। उपसम में आमी समम, क्यों? जत्थो निर्वाण संपत्ति, क्या अर्थ है इसका, कि जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मोक्ष रूपी संपत्ति की प्राप्ति होगी, दत्तो निर्माण संपत्ति। पहले शुद्धोपयोग होता है, और उसे क्या मिलेगा, केवल ज्ञान और अनंत सुख। तो केवल ज्ञान क्या होता है, तो दूसरा ज्ञानाधिकार में केवल ज्ञान का स्वरूप बता दिया, और तीसरा सुखाधिकार में अनंत सुख का स्वरूप बता दिया, ये संसार के सुख का नहीं बताया। फिर किसी ने शिष्य ने प्रश्न किया कि एक संसार में एक सुख और तो अभी तो होता है, ये लोग जिसके पीछे दौड़े दौड़े फिरते हैं, और ये ज्ञान भी और होता है कि हाँ हाँ होता है, इसे बोलते हैं लौकिक सुख और लौकिक ज्ञान। ये डिग्रियां है ना जितने डॉक्टर इंजीनियर हैं, ये सब ये लौकिक ज्ञान और लौकिक सुख, ये मकान जायदाद, ये बढ़िया बढ़िया बंगले, ये सब सुख भी तो होते हैं, हाँ ये भी होते हैं। तो सुखाधिकार तो दो ही तरह का सुख बता दिया, कि वो भी सुख होता है, वो ऐसा कहलाता है, तो उसकी दुर्दशा बताई मुझे। लौकिक सुख बताया तो, लेकिन कितना खोटा है ये बताइए, और फिर ये कहा भैया ये लौकिक सुख ठीक है, छोटा मोटा तो ठीक है, हम इससे ही काम चला लेंगे, लेकिन ये मिलता कैसे है, वही वही शुद्धोपयोग से मिलेगा कि नहीं, नहीं अरे उससे कैसे मिलेगा, उससे तो वो असली मिलता है, तो ये कैसे मिलेगा कि एक एक सुखोपयोग होता है उससे मिलेगा, तो सुखोपयोग आ गया। तो ऐसे असीमी गाथा ऐसे आ गई नहीं, असीमी गाथा जो है प्रवचन सार की बहुत महिमा सुनी होगी, उसकी गीत बहुत सुने होंगे ना, तो कौन से अधिकार की गाथा है अभिनंदन जी, शुभ परिणाम अधिकार की गाथा है, कुंद कुंद ने शुभ परिणाम अधिकार में डाला है उसे, जिसको तुम बहुत महान गाथा कह रहे हो, जैसे शुभ परिणाम है। देखो इतनी जो माथे माथे में भरा है वो इतने दो पेज में लिखा है मैंने, अब वो इतना भरा हुआ सोचा है ना, तो जब पढ़ूंगा जब वो निकलेगा तो निकलना चाहिए क्या नहीं। देखो अब अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख तो अरहंत सिद्धों को प्राप्त ही है, इस प्रकार शुद्धोपयोग के फल में प्राप्त होने वाले अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का प्रतिपादन भी देव का स्वरूप का ही प्रतिपादन है। तुम कह रहे हो कहां की गप्पे लगा रहे, हम सच्चे देव का ही स्वरूप बता रहे, ये बताओ कि हम ये बताएं कि अपना सच्चा देव किसी का भला नहीं करता, बुरा नहीं करता है, किसी को कुछ देता नहीं है, लेता नहीं है, तो ये क्या होगा, ये भगवान की पूजा होगी क्या नहीं, ये भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन होगा क्या नहीं, अभी तो मानते ही नहीं हम, तो ये कहते कि ये देता है, ये देता है, ये देता है, और इतना देता तो इनने बता दिया, अब और कुछ देता हो तो तुम बताओ, ये किनके बारे में बात हो रही है, जो बिल्कुल कुछ नहीं देता कभी, जिसने आज तक कभी कुछ नहीं दिया, जो अनंत काल तक कभी किसी को कुछ नहीं देगा, जो अनंत सर्वज्ञ भगवानों ने ये बात कही उनका वर्णन है। ऐसे ही सब पुजारी सब ऐसे ही है, आके और कुछ पूछते ही नहीं है। अभिनंदन जी, पंडित जी ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, कोई मंत्र दे दो, ये कैसा कह दो, ऐसा कर दो है? हम छोटे छोटे तुम्हारे बराबर थे ना, तो हमारे पास भी ऐसे लोग आते थे। अब तो डरने लगे हम नहीं आते हैं, तो फिर ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो। तो कोटा में बड़े दादा ने शुरू किया कुछ तो मेरे को भी देख क्या किया, बोले क्या करें, आते हैं हर एक पंडित के पीछे पड़ते हैं, चेंटते हैं, फिर कुछ ना कुछ बताते ही हैं, फिर लूटते हैं इनको, फिर चक्कर में डालते हैं। उन्होंने कहा इसलिए बे लूट लें, उसके पहले तुम लूट लो। कि नहीं, हम लूटने का काम नहीं है, हम तो उन्हें सुन नवोकार मंत्र बता देते हैं कि जब लो इससे तुम्हारा काम हो जाएगा है? और हम एक पैसा नहीं लेते हैं, हम कुछ ये नहीं करते, ये सच्ची घटना है। बैठे हैं दादा भाई गवाह के रूप में, कोट कोटा की बात है, रोन ऐसे कोटा कह रहे। मैंने कहा दादा चाहे बचाने के लिए करो चाहे जिसके लिए करो, प्रचार तो इसी का होता है, इस मंत्र से सिद्धि जी होता है। क्यों अजित जी, मेरा उत्तर समझे आप? प्रचार तो वही बात का कर रहे हो कि ये भी एक धंधा जैन धर्म में चलता है, हमें तो ये बताना है कि ये सब लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, तुमको बुद्धू बना रहे हैं। लेकिन नहीं कह सकते, उनका इतना विशाल बहुमत है, आपको सच में आपको खड़े नहीं रहने दे सकते, आप खड़े नहीं रहने देते। क्योंकि एक विधि है, बताऊं कि सबसे पहले किसी को विधान कराना होगा तो वो विधानाचार्य से पूछेगा, पंडित से नहीं पूछेगा कि कौन कराना, कैसे कराना, किसको बुलाना, आपसे पूछोगे। और फिर हमारा नाम आपसे पूछेगा, तो आप ऐसे आदमी का क्यों देंगे कि जो हमारे आगे हमारे खटिया करते चले, हमारे तो अपना साथ दूसरा रिश्ता है, इसलिए वो अलग बात है। लेकिन सारे जगत के पंडित ऐसा क्यों करेंगे मुझे बताओ है? क्योंकि खड़े नहीं रहने देंगे का मतलब समझे ना, वो तो कितना ही सच्चा कितना ही अच्छा बोलता हो वो उसका नाम कभी सजेस्ट करेगा ही नहीं। उसे अभी कुछ चाहिए नहीं, क्यों कि उसने इसको बिजनेस नहीं बनाया है, इसलिए उसे भी परवाह नहीं है, नहीं बुलाओ तो नहीं बुलाओ, अपने घर बैठे हैं। अभी अपने साथ ऐसा नहीं है, घबराना नहीं लेकिन सारे जगत की स्थिति ऐसी है, तुम्हारे सामने तो आएगी 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 आएगी। अब तो विद्यानंद जी महाराज भी इससे बहुत नाराज है। एक अपना विद्यार्थी था तो उसे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में लगाना था, तीन को तो लगा दिया था महाराज ने प्रोफेसर, लाख लाख रुपए महीना पाते हैं वे, तो उन्हीं का सहपाठी वो भी था। मैं थोड़ा ऐसा रहा वही कहा कि भाई ये भी है, वो उपचार है, ये भी शायद फर्स्ट डिवीजन आया था, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया था, मैं इसका नहीं करूंगा। क्यों महाराज क्या बात हो गई, टूटना में हमारा की लड़कों से नाराजी क्या ये हो गई, बोले ये सब उसने लग गया पूजा पाठ कराने, शादी विवाह कराने, ये सारे पंडित इसमें लग जाएंगे, तत्व प्रचार कौन करेगा, तत्वाशुद्ध कौन पढ़ाएगा। ये इतने गुस्सा होके बोले, मैं मान ही नहीं सकता था कि महाराज बोल रहे हैं। उससे ही बहुत नाराज है जो उनका रिश्तेदार लगता है, रोज वहां से लाए थे दक्षिण भारत से, पढ़ा लिख के तैयार किया और यूनिवर्सिटी में लगा दिया प्रोफेसर प्राकृत का, आपको मालूम है ना। यानी उनको भी नहीं तो महाराज लोग तो ज्यादातर वही सपोर्ट करते हैं ना, मैं मुझे नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आता, नहीं नहीं कि किसी पिताचारी को मेरे पास बताया, मैं किसी को नहीं लगाऊंगा। क्यों? कि नुकसान है यूनिवर्सिटी का। मैं क्या नुकसान है महाराज? बोले ये सब वहां पर भी फेरे पढ़ाते रहते हैं, पढ़ा कौन पढ़ाते नहीं, यूनिवर्सिटी में छुट्टियां छुट्टियां मारते रहते हैं। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, सब प्रयोजन में कह रहा हूं, जो टीवी पे भी जाएगा बन रहा है, बिल्कुल सरल और सहज बात है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम उन गड्ढों में तुम नहीं फंस जाओ। इसके लिए कितनी महान चीज है, और ये सफेद झूठ है। गुरुदेव मिले हमें, उनने हमें ये बता दिया, हम कैसे कहें कि जो नहीं हो जाता है कि ये हो जाएगा? नहीं नहीं हो सकता। देखो सिद्ध परमेश्वरी तो हमारे लिए आदर्श हैं, पर अरहंत परमेश्वरी जिन शास्त्रों के मूलाधार भी हैं। कहते सिद्ध ने तो हमें आदर्श हैं, उनने हमारे लिए कुछ किया नहीं, उनका दिया हुआ हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन अरहंत भगवान की वाणी तो हमारे इन सब शास्त्रों की मूल आधार है। ये शास्त्र उस वाणी के आधार पर बने हैं। ये तो अनंत उपकार है क्या नहीं है? बोलू बता मेरे से। कहते आप कौन कौन सी क्लास पढ़ाते हैं? नहीं कि हम जिंदगी पढ़ाते ही रहेंगे, अब पढ़ाने वालों को पढ़ाते हैं। मैंने कोई क्लास नहीं लेते यार, क्योंकि प्रचन करते हैं। अब क्लासें कितनी कितनी लेंगे, अब हमारे विद्यार्थी लेते हैं। सच्ची घटना बता रहा हूं सर। तो फिर आपके विद्यार्थी कैसे कहलाए? मैंने कहा हाँ ये बात तो सोचने लायक है, अब अपना विद्यार्थी कहलाना होगा तो इन्हें पढ़ाना पड़ेगा क्या? अरे भाई मैंने कहा ये तो हम मर जाएंगे तब भी हमारे विद्यार्थी कहलाएंगे। क्यों? कि हमारी लिखी किताबें पढ़ेंगे ना, कोर्स में भेजी है सब किताब। ये भी पक्षपात है कि आपकी किताबें रखनी कोर्स में और दूसरे की। अरे भाई हमारी रखी नहीं है किसी ने, हमने उनके लिए कोर्स तैयार किया है। समझ रहे? तुम्हें पता नहीं हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। समझ रहे क्या? तुझे इतना ख्याल था? हमने वो बालबोध पाठ वाला भाग 1, 2, 3, नित्र ज्ञान पाठ वाला भाग 1, 2, 3, तत्वज्ञान भाग वाला 1, 2, 3, ये निमित्त उपादान, ये सारी जो किताबें लिखी हैं ये विद्यार्थियों के लिए पढ़ाने के लिए तो लिखी हैं। परमात्मा जिनसे कहता रहता हूं कि ये अनुशीलन तुम्हारे लिए लिखे हैं, तुम नहीं पढ़ते हो तो मेरा लिखना बेकार हो जाएगा। अंदर में कहीं ना कहीं होता है, चोर घुसा रहता है, किसी तीव्रतम भाव होता है किसी कल्याण का, उसे कल्याण से निमित्त लिखी जाती है। तो ये तो विद्यार्थियों के कोर्स की किताबें हैं क्या? इसलिए वे तो इन्हें पढ़नी ही पड़ेंगी। और जब वे हमारी, आप बताओ जो अध्यापक आपको पढ़ाता है 6वीं क्लास में, आप उसके ज्यादा भगत होते हो कि जिसकी कविता कहानी आपकी कोर्स की किताब में होती है, एक कहानी से। समझ रहे? तुम लोगों को भी याद है ना, ज्यादा भक्ति किसके प्रति होती है? हमें तो इतना याद है कि माखनलाल चतुर्वेदी की हमें 4 पंक्तियां याद हुई थी। कौन कौन सी? ये फूल ये बनवाली वहां फेंक देना, न मात्र भूमि पर शीश कटाने, वीर अनेक जावे। वो तो हमको भी माखनलाल चतुर्वेदी वहां कभी दिखते थे और कोई दिखता ही नहीं था, हमारे अध्यापकों के नाम ही याद नहीं है। कितनी गहरी पकड़ होती है इन कवियों की, लेखकों की, समझे ना? अरे तुम जिंदगी भर पढ़ाओगे तो भी तुम्हारा नाम याद नहीं रहेगा, पर हमारी एक कविता पढ़ लेंगे कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं तो इनकी जिंदगी भर याद रहेगी और हम भी याद रहेंगे साथ में, है कि नहीं? बोला वहां एक कहानी एक कविता पढ़ने से आप कितने बड़े भगत बन जाते हैं। अभी अध्ययन है, अजानते मुसलमान है तो भी मुसलमानों की कविताएं होती है ना, तो भी आपको नहीं लगती अच्छी लगती ना? तो हमारी तो सारी कविताएं हमारी ساری کتابیں ہماری ہم نے اکثر اکثر لکھا میں پتا ہی نہیں گرو کسے کہتے ہیں شسیہ کسے کہتے ہیں. اب ہمارے اتنے مہان لوگ ہیں کہ 5 سال ایک ایک اکثر پڑھایا ہم نے ابھنندن جی تو ہاں گرو نہیں اور جن نے ایک اکثر نہیں پڑھایا اور جب تک وہ زندہ رہے جب تک ایک اکثر سمجھ میں نہیں آیا سن لیا ہوگا پروچن میں تو اب بھی ہم یہ بھی ہمارے گرودیو بھی تمہارے گرودیو ہو گئے. کس کے گرودیو ہیں وہ تمہارے گئے ہمارے جس کے پاس مال ہو بتاؤ میں کہہ رہا ہوں مال ٹھیک گرودیو کا نے تمہیں دیا نا ہوگا نا تمہارے پاس لیکن ہے تو کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اس لیے ابھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا ابھی ہم پورا ارتھ نہیں سمجھتے ہیں. ہم نے کسی کو ٹریننگ نہیں دی کہ تم ہمارے ودیارتھی کہو کسی سے اور ہم پہ کرپا کر کے کہتے بھی نہیں ہو. ہمارا نام لے کے کچھ لابھ تمہیں ملتا ہوگا ہمیں نہیں ملتا ہے. کیوں ہوتا کیا نہیں ہوتا لیکن وستو کی استھتی ایسی ہے وہ آٹومیٹک چلتی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ایسا نہیں کہ نہیں چلتی ہو. سدھ پرمیشٹی تو ہمارے لیے ماتر آدرش ہیں پر ارہنت پرمیشٹی جن شاستروں کے مولادھار بھی ہے اس کا ارتھ کر رہے تھے ہم. یہی کارن ہے کہ 80ویں گاتھا میں صاف صاف لکھ دیا کہ جو ارہنت بھگوان کو دیوگن پریائے سے جانتے ہیں ان کا موہ ناش کو پراپت ہوتا ہے. تاتپر یہ ہے کہ موہ کے ناش کے لیے ارہنت کا سوروپ جاننا اتنت آوشیک ہے. یہی کارن ہے کہ پورے گیان تتو پرگیاپن نامک پرتھم ادھیکار میں ارہنت سدھ بھگوان کے پرمکھ گن انت گیان اور انت سکھ کا وستار سے نروپن ہے. اس پرکار یہ دیو کے سوروپ کا پرتیپادک ہونے سے دیوادھیکار ہے. یہ کائے کا ارتھ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک اور نکالا ہے کون دیوادھیکار شاستراधिकार گروادھیکار. اس نے دیوادھیکار پہلے کا نام کیوں رکھا یہ اس کی 3 دن سے ویاخیان چل رہا ہے. ایک پیج ہوا ہے اوپر سے جین مان نے تان سال لکھا نا اس کے پیچھے ہی وہ لین لکھی ہے نا. اب اس دیوادھیکار کے انت میں شاستروں کے سوادھیائی کی پاون پریرنا دے کر اگلے ادھیکار میں شاستروں میں پرتیپادت وستو کے سوروپ کا سامان اور وشیش پرتیپادن کیا گیا ہے. یہ پنکتی کہاں سے لکھی کائے کے لیے لکھی دیوادھیکار کے انت میں شاستروں کے سوادھیائی کی پاون پریرنا دے کر ارتھ تو سمجھ میں آ گیا نا اس کا. تو بولو اس کا ادھیکار انت والا کون سا حصہ ہے اور کون سی شاستروں کے سوادھیائی کی پریرنا دی ہے وہ گاتھا بولو. ایسے بہت اچھے اچھے واقعے اسی عریب قریب اس میں ہیں. آگم جیٹھا تدو جیٹھا کیا ارتھ ہے اس کا. اس لیے آگم میں چیشٹا مانے پڑھنا لکھنا آگم میں کچھ پلتا پلٹی کرنا پلٹنا گلا کر دینا لکھنا نہیں مانے پیج پلٹ کے دیکھنا پڑھنا پرتن کرنا. آگم میں کسی بھی پرکار کی چیشٹا کرنا سمجھے آگم چیٹھا تدو جیٹھا اس لیے وہ سب سے بڑی ہے. دھرم میں ویوہار دھرم میں سوادھیائے کرنا سب سے بڑا دھرم ہے اس کو دوپیوگ کو چھوڑ کر. کتنے اسپشٹ آگیا ہیں کند کند دیکھ آگم چیٹھا تدو جیٹھا تو دوسری گاتھا کا ارتھ ہے جو یہ چھند بولا نا اس نے یہ تو گاتھا دوسری ہے. بولو ہندی بولتی تو پراکرت نہیں بول سکتے. بولو 86ویں گاتھا 86ویں तम्मा सत्यम समधिदव्यम ये सूक्ति है, इसलिए शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए। शास्त्र में समाधि ले जाओ, समधिदव्यम सत्यम चेष्टा, उसको चेष्टा करे। मैंने कहा था ना पलट लो, ऐसा करो, कुछ करो। आगम चेष्टा तदो जेष्ठा, माने आगम में चेष्टा करो, उसके माध्यम से आत्मा को समझो। वो ही सच्चा रास्ता है, वही एकमात्र उपाय है। पूरी शक्ति जितनी बची हो वो इसमें लगाना चाहिए। एक तो अपनी जितनी उम्र बची है वो पूरी लगाना चाहिए, जितनी निकल गई उतर निकल गई। दूसरी अपन ने पंडिताई का ब्रह्मचारी का भेष लिया है तो इसलिए भी अपन को पूरी लगानी चाहिए है। और इसके हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए भी पूरी लगाना चाहिए। आप कहीं जाओ इससे सर्वश्रेष्ठ कोई काम कम से कम अपने लायक तो नहीं है। और अब किससे क्या लेना है, अभी हमें तुम्हें पढ़ाएं और उसका तुमसे कुछ लें। हम भगवान की भक्ति करें और उसका हम किसी से कुछ लें, तो ये क्या है, कि कितनी छोटी बात है। क्यों सबको तो ये करे, धर्म करो, तुम करो, ये करो करो करो, और उसका ही अपना लेने का भाव रखें, तो कितनी हल्की बात है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए बिना कोई विकल्प के, जिसमें हमारा अधिकतम स्वाध्याय हो, हमें अधिकतम बात जानने को मिले, ऐसा काम में अपने जीवन को लगाना चाहिए। मैं दो वाक्य कहकर खत्म करता हूं। एक तो जैसे धर्म के काम में कहीं जाने का विकल्प आता है अभिनंदन जी, तो ये सोचो कि हमें कहां ज्यादा लाभ मिलेगा। आप तो दोगे, आप तो पूजा पढ़ाओगे, सुनोगे, सब पुराण कराएंगे, जानते ही हैं उसके लिए तो बुरा रहा है, वो तो लोग आपसे करा ही लेंगे। आपको कहां मिलेगा, निर्णय करो। तो जहां तुम्हें लगे वहां जाओ, जाना तो है ही। मैंने सोच में मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं मैं ये बात, कि हमें ज्यादा ज्यादा फायदा मिले, जो बात हम समझने को ज्यादा मिले तो हमें वहां जाना चाहिए। हम क्यों और कोई विकल्प हमारे लिए क्यों प्रमुख हो उसमें, क्योंकि हमें बताना है, अब ये भी करना है, इनका भी सहयोग करना है। एक गृहस्थ है मतलब, तो जो भी करना है हमारे लिए तो हमारा उनका सहयोग भी हो और हमारा बढ़िया से बढ़िया काम भी हो। तो इससे हमें और क्या दूसरा रास्ता होता है। दो बोला था मैंने, तो एक तो मैंने अभिनंदन के लक्ष्य बोला था तो वो तो हो गया, एक तुम्हारे लक्ष्य बोल रहा है, अभी थोड़ा भूल रहा हूं कि अभी तुम इधर आ गए हो तो ये काम नहीं छूटना चाहिए कभी। 23 घंटा में छूटोगे तो माफी हो सकती है। 1 घंटा स्वाध्याय का की हाजिरी और मैं लगाऊंगा, वो रोजीना की गारंटी से लगनी चाहिए। ये विकल्प मुझे यहीं पर साथी गद्दी पे बैठे बैठे आया है, और इसलिए मैं दोनों का नाम लेके कह रहा हूं। लेकिन जो और भी ले लेने लोग तो मुझे कोई ऐतराज थोड़ी है, वैसे वो धर्म परीक्षा जैसी कहानियां थोड़ी है, कभी किसी को दी है। लेकिन इन दोनों के लक्ष्य से ये भाव मुझे आया है कि ये सचमुच सर्वश्रेष्ठ काम है। मैं कोई ऐसा नहीं समझना ना कि तुम ये कहोगे जहां मैं जाऊं तो वहां आ जाया करे, उस लक्ष्य से धन जमा तो नहीं कहा है। लेकिन तुम्हारा हित और किसी में समझ में आता हो तो वहां जाओ, लेकिन लक्ष्य ये होना चाहिए, निर्धारण दूसरा नहीं होना चाहिए। जब तुम कहते हो कि हमारा मुख्य लक्ष्य ये है कि अब हमें तत्व ज्ञान का अधिक से अधिक लाभ लेना है, इसलिए हम जयपुर आए हैं, तो फिर वो होना चाहिए ना, वो दिखना चाहिए। ये दुनिया तो चलेगी, سب چلتے ہی ہیں. کوئی کا کام کہیں دنیا میں کہیں روکا نہیں ہے, سب چلتا ہے. یہ بھی چلے گا, 19 چلے گا, 20 چلے گا, اس میں کیا ہے؟ یہ بلڈنگ تھوڑی ایسی نہیں, ایسی بنے گی, ایسی بنے گی, کیا ہوتا ہے؟ یہ 10 فٹ کی جگہ 9 فٹ بنے گا تو کیا ہو جائے گا؟ موکش کا راستہ بگڑ جائے گا, جھگڑا ہو جائے گا, کوئی جا نہیں پائے گا. نہیں, بنیا بنیا ایک سے بڑھیا سے بڑھیا بننا چاہیے, یہ بات میں مانتا ہوں. کوئی بھی چیز کا نقصان نہیں ہونا چاہیے, مینجمنٹ والے کو مینجمنٹ کی دشٹی سے دیکھنا چاہیے. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ سروپری وہ ہے, اس میں اسی جگہ ویسے وہ نہیں بگاڑا جا سکتا, بالکل پکا ہونا ہے. اور میں کہتا ہوں سنستا کا, سماج کا, دھرم کا کلیان بھی, تمہارا کلیان ہوگا تو ان کا ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. یہ ودیارتھی ہے نا, ان کا کلیان ہوگا تو سماج کا ہوگا, ان کا خود کا ہی نہیں ہوگا تو سماج کا کیسے ہوگا؟ مارن بانٹن بارے کے لگے جو میتھی کا رنگ تم بانٹے گا میتھی, اس کے ہاتھ تو رنگ نہیں بارے ہیں. اس لیے اس کا وکلپ نہیں, وکلپ سے بہانے سے ہم اس تتو گیان کی جو دھارا ہے, جو اصلی کلیان کی دھارا ہے, اس سے الگ نہیں ہٹ سکتے, نہیں ہٹنا چاہیے.